ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಜ್ ಕೇ ಇಸ್ ರಾಜಯೋಗ ಶಿಬಿರ್ ಕೇ ಸತ್ರ ಮೇ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೇ ಬೀಚ್ ಹಮಾರೇ ಆದರ್ಶ ಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದರಣೀಯ ಉಷಾ ದೀದಿ ಜಿ ಪಧಾರೇ ಹೇ. ಏಕ ಹಾತ್ ಸೇ ಹಮ್ ದೀದಿ ಜಿ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರೆಂಗೇ ಔರ್ ಮಧುರ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಕೇ ಸಾಥ್ ದೀದಿ ಜಿ ಕಾ ಅಭಿವಾದನ್ ಕರ್ತೇ ಹೇ, ಅಭಿನಂದನ್ ಕರ್ತೇ ಹೇ. ಆಪ್ಕೀ ದೀದಿ ಜಿ ಏಕ ನಿರಾಲಿ ಪಹಚಾನ್ ಹೇ. ಆಪ್ಕೀ ಆವಾಜ್ ಮೇ ಓಜ್ ಔರ್ ತೇಜ್ ತೋ ಹೇ ಹೀ, ಲೇಕಿನ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಆಪ್ನೇ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ್ ದೋ ಗ್ರಂಥೋ ಪರ್ ಗಹನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯೋ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಭೀ ಕಿಯಾ ಹೇ. ವರ್ತಮಾನ್ ಮೇ ಆಪ್ ಮುಖ್ಯಾಲಯ ಶಾಂತಿವನ್ ಪರಿಸರ್ ಮೇ ಹೋ ರಹೇ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಕ್ತಾ ಭೀ ಹೇ. ಐಸಿ ತೇಜಸ್ವಿ ತಪಸ್ವಿ ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜಿ ಕಾ ಮೇ ಬ್ಯಾಜ್ ಗುಲ್ದಸ್ತಾ ಔರ್ ತಿಲಕ್ ಸೇ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೂಂಗಿ ಔರ್ ಆಪ್ಕಿ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಲಿಯಾ ದೀದಿ ಜಿ ಕೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೇ. ದೀದಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೇ ಯಹೀ ದೋ ಚಂದ ಲೈನೆ ಕಹನಾ ಚಾಹೂಂಗಿ. ಆಪ್ಕಿ ಸೋಚ್ ಮೇ ಆತ್ಮ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕಿ ಮಹಕ್ ಹೇ, ಆಪ್ಕಿ ಇರಾದೋ ಮೇ ಹೌಸಲೋ ಕಿ ಮಿಠಾಸ್ ಹೇ, ಆಪ್ಕಿ ನಿಯತ್ ಮೇ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಕಾ ಸ್ವಾದ್ ಹೇ. ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಕಹೇ ಹಮ್ ದೀದಿ ಜಿ, ಆಪ್ಕಿ ಪೂರಿ ಜಿಂದಗಿ ಮಹಕ್ತಾ ವಾ ಗುಲಾಬ್ ಹೇ, ಮಹಕ್ತಾ ವಾ ಗುಲಾಬ್ ಹೇ. ಐಸಿ ಹಮಾರಿ ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜಿ ಆಜ್ ಕಾ ಜೋ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೆ ಸಮ್ಮುಖ ಇಸ್ ವಿಷಯ ಪೆ ಪ್ರಕಾಶ ಡಾಲೆಂಗಿ. ಆದರಣೀಯ ದೀದಿ ಜಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಕಾ ರಾಜಯೋಗ ಶಿಬಿರ್ ಕಾ ದೂಸರಾ ಸತ್ರ ಹೇ, ಜಿಸ್ಮೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ್. ಕಲ್ ಆಪ್ ಸಭೀನೆ ಆತ್ಮಾ ಕಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಕೋ ಜಾನಾ ಸಮಝಾ. ಜಹಾಂ ತಕ್ ಆತ್ಮಾ ಕಾ ವಿಷಯ ಆತಾ ಹೇ ವಹಾಂ ತಕ್ ತೋ ಹರೇಕ್ ಕಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಏಕ್ ಹೀ ಹೇ. ಹರ್ ಕೋಯಿ ಉಸ್ ಆತ್ಮಾ ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತೇ ಹೇ, ಚಾಹೆ ಉಸ್ಕೋ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ನಾಮೋ ಸೆ ಸಂಬೋಧಿತ ಕಿಯಾ, ಕಿಸಿ ನೆ ಉಸ್ಕೋ ಆತ್ಮಾ ಕಹಾ, ಶಕ್ತಿ ಕಹಾ, ರೂಹ್ ಕಹಾ, ಸೋಲ್ ಕಹಾ, ಎನರ್ಜಿ ಕಹಾ, ಲೇಕಿನ್ ಹೇ ಉಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ಔರ್ ಇಶಾರಾ. ಪರಂತು ಜಹಾಂ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕಾ ವಿಷಯ ಆತಾ ಹೇ ವಹಾಂ ಆಜ್ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಅಂದರ್ ಅನೇಕ ಮತ ಮತಾಂತರ ಹೋ ಗಏ ಔರ್ ಇತನೆ ಮತ ಮತಾಂತರ ಹೋ ಗಏ ಕಿ ಆಜ್ ಮನುಷ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಕೆ ನಾಮ ಪರ್ ಹೀ ಅನೇಕ ವಿವಾದ ಮೇ ಆ ಜಾತಾ, ಜಗಡಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ, ಲಡಾಯಿಯಾಂ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ. ತೋ ಜಬ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಕಿ ಈಶ್ವರ್ ಏಕ್ ಹೇ, ತೋ ಫಿರ್ ಇತನಾ ಮತ ಮತಾಂತರ ಕ್ಯೂ ಹೇ? ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮೇ ಕಹೀ ಗಯಿ ಥೀ ತೋ ಏಕ್ ಬಹನ್ ನೇ ಆಕರ್ ಮುಜೆ ಸುನಾಯಾ ಕಿ ಉಸ್ಕಾ ಬೇಟಾ 17 ಸಾಲ ಕಾ ಹೇ ಔರ್ ವೋ ಅಪ್ನಿ ಮಾ ಸೆ ಪೂಛ್ತಾ ಹೇ ಕಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮೇ ಇತನೆ ಭಗವಾನ್ ಕ್ಯೂ ಹೇ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಮೇ ಏಕ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯೂ ಹೇ? ವೋ ಮಾ ಉಸ್ ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ಸಮಝಾನೆ ಕಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ತೀ ಹೇ ಕಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮೇ ಯೇ ಸಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಹೇ. ವೋ ಕಹತಾ ಹೇ ಬಚ್ಚಾ ಭಗವಾನ್ ತೋ ಏಕ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ನಾ, ಔರ್ ಅಗರ್ ಯೇ ಸಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಹೇ ತೋ ಇನ್ ಸಬ್ ಕಾ ಹೆಡ್ ಕೌನ್ ಹೇ? ಪರಿವಾರ ಮೇ ಭೀ ಏಕ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ಇನ್ ಸಬ್ ಕಾ ಹೆಡ್ ಕೌನ್ ಹೇ? ವೋ ಮಾ ಉಸ್ ಬಚ್ಚೆ ಕೆ ಪ್ರಶ್ನ ಕಾ ಜವಾಬ್ ನಹೀ ದೇ ಪಾತಿ ಹೇ, और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई विशेष दिन होता है, त्योहार होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है। यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं अपने मन को किस में एकाग्र करूं। और इसीलिए उस बच्चे को यही लगता है कि मंदिर जाने के बाद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मन तो लगता नहीं है, इसी उलझन में रहता है, इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊं, आखिर किस में लगाऊं। वो मां को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है, मंदिर नहीं जाता है, और उसके लिए कहीं ना कहीं वो अपने को जिम्मेवार समझती है कि शायद उसके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाती हूं, इसीलिए इसके अंदर ये उलझन बढ़ती जा रही है। ये एक मां का सवाल नहीं है, शायद आज की युवा पीढ़ी की ये सोच बनती जा रही है कि आखिर ईश्वर कौन है। एक बार एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था वो सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, कण कण में भगवान है, पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवता है सब भगवान है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, और अगर सचमुच भगवान है तो कोई सिद्ध कर बताए। जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा आखिर सत्य क्या है, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है। आपका विवेक क्या कहता है, क्योंकि ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, क्या ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, क्या निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे। आपका विवेक क्या कहता है, क्या सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आया तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है, पंखे जैसा है। क्या ये सभी सत्य थे? इसमें से एक सत्य था या सत्य कुछ और था जिसको देख नहीं पा रहे थे? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूं कि पांचों सूरदासों को कहा गया कि एक छठा सूरदास है जो दूर बैठा है, आपको जाकर उनको बताना है कि हाथी कैसा है। ये पांचों वन बाय वन जाते हैं छठे सूरदास के पास और कहते हैं कि देख भाई, पहला जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद चौथा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और थोड़ी देर के बाद पांचवा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम पंखे जैसा है। पांचों की बातें सुनने के बाद छठा सूरदास क्या समझेगा कि आखिर यह हाथी है कैसा? हर कोई आता है अलग बात कहता है, आखिर यह है कैसा? लेकिन फिर भी विश्वास करता है कि पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, सही बोल रहे होंगे, होगा कोई ऐसा प्राणी। विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, आपने जो समझा वो उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है कि देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया उसने जो मुझे बताया वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी वो दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता और कभी वो पंखे जैसा हो जाता है। अब सातवां सूरदास जिसका आईक्यू लेवल हाई था, सुनने के बाद क्या कहेगा, क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि भाई, हाउ कैन यू बिलीव दिस, कैसे तुमने विश्वास कर लिया? कोई प्राणी रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? तो छठा सूरदास क्या कहता है, पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। तो सातवां सूरदास कहता है मैं नहीं मान सकता, मेरा विवेक इस बात को स्वीकार नहीं करता है, क्या छोड़ दो। कहीं हमारी हालत भी यही तो नहीं हुई? हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया, किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया, उन्होंने कहा प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया, उसने कहा कण कण में भगवान है। किसी ने निराकार में कुछ महसूस किया, उसने कहा निराकार है। किसी ने साकार इष्ट देवों से कुछ प्राप्ति कर ली, उसने कहा यही परमात्मा है। उन ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव और महसूसता के आधार पर मनुष्य को सुनाया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया। ऋषि मुनियों ने कहा है, झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं, विश्वास कर लिया। जिसने जो कहा, सतवचन महाराज, अब वो मनुष्य आज की जनरेशन के व्यक्ति को समझाना चाहता है ये सब ईश्वर है। आज की जनरेशन का व्यक्ति जिसका IQ लेवल इतना हाई है, उसको जब कहते हैं तो वो बच्चा क्या कहता है, हाउ कैन यू बिलीव दिस, कैसे आपने मान लिया। मनुष्य ने क्या कहा, अरे ऋषि मुनियों ने कहा है, उन्होंने महसूस करके किया कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। तो आज की जेनरेशन का व्यक्ति क्या कहेगा, आई डोंट बिलीव दिस। उसको समझाना, वो कहता है एक बात कहो ना, 10 बात आप हमारे सामने रख देते हो और फिर कहते हो, और वो सारी एक दूसरे से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हो, और फिर कहते हो उस पर विश्वास करो, कैसे हम विश्वास करें। ईश्वर एक है तो एक बात कहो। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा कि हमें उसको मानना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मतें हैं, इसलिए हम और एक मत नहीं देना चाहते। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है। जैसे एक झवेरी के पास कसौटी होती है जिससे वो पहचानता है कि भाई सोना कितना कैरेट का है, फिर विश्वास करता है। ये कसौटी है 5 बातें। ईश्वर किसको कहा जाए? पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे परमेश्वर। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन, ईश्वर एक है। तो जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करें, उसको कहेंगे परमेश्वर। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए, उसको परमेश्वर नहीं कह सकते हैं। उसका कोई गुरु नहीं होना चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं जबकि वो उन सभी चक्रों से पर है। मनुष्य आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, परमात्मा के लिए कहा जाता वो अजन्मा है, अकाल मूरत है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में वो नहीं आते हैं, अकाल मूरत है। अच्छा, जिसने जन्म लिया उसको देह है, और देह है तो देह के संबंध है। परमात्मा ने कहा मैं अव्यक्त हूं, गीता के 4th अध्याय में, अव्यक्त, मुझे कोई व्यक्त देह है ही नहीं। मैं अव्यक्त हूं। तो जब देह नहीं है तो देह के संबंध भी नहीं है। जिसको देह है उसने कर्म किया, और कर्म किया तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। जबकि ईश्वर के लिए कहते वो अकर्ता भोगता है, न कर्म करता है न फल भोगता है। अब जिसने कर्म किए या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में भी हम आते हैं। ईश्वर को कहा जाता जो पाप और पुण्य से भी परे है, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता है या दुख मिलता है। तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं। ईश्वर के लिए यही कहा जाता दुख हरता सुख करता, इसलिए हरि कहा उसको। जो इन सभी चक्र से पर है उसको कहेंगे परमेश्वर। जो इन सभी चक्रों में आने वाले हैं उसको परमेश्वर तो नहीं कहा जाएगा। चौथी बात, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जो जानने वाला, त्रिनेत्री, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला है, और त्रिमूर्ति या त्रिदेव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, उसको कहेंगे परमेश्वर। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ लगती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी वो अपरंपार है, उसको कहेंगे परमात्मा, इन्फिनिट। ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत या सर्वशक्तिमान। अब अगर एक एक मत को उठाकर देखे, उनके ये पांचों कसौटी पर अगर कस कर देखे, सत्य है। पहली बात, जब हम कहते प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? नहीं कह सकते। वो किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य किसको कहेंगे? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना या उस चित्रकार का चित्र है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? चित्रकार की रचना है। तो पहली बात, प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं था, क्योंकि सत्य है प्रकृति परमेश्वर की रचना है। क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? क्या आत्मा को भी सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए तो मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाता है तो यही गाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सत्य क्या है? हम ब्रह्मास्मि कहना सत्य है, या तुम मात पिता हम बालक तेरे कहना सत्य है? विवेक क्या कहता है? क्या कहेंगे? वही तो कहा ना कि विवेक क्या कहता है, सत्य किसको माना जाए? क्या अहम ब्रह्मास्मि कहना सत्य है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? संतान है कहना सत्य है, यही विवेक कहता है। तो इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा कहना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस अगेन, जो हमने मान लिया। क्योंकि दोनों सत्य तो नहीं हो सकता है, या तो आत्मा सो परमात्मा सत्य है, या तो आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है। और हर इंसान जब ईश्वर के सामने ये प्रार्थना गाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये प्रार्थना जो अनादिकाल से आई है, ये सत्य है, या जो आज के इंसान ने कह दिया वो सत्य है? क्लियर हो गई बात? दूसरी बात कि अगर मनुष्य खुद ही अगर परमात्मा हो, देखो परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो हम प्राप्त कर ले। इस संसार में मनुष्य अपने पुरुषार्थ से कोई भी होदे को, पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप नहीं बन सकता है। बन सकता है? नहीं बन सकता है। खुद का बाप नहीं बन सकता है। इस तरह से मनुष्य आत्मा ने जैसा कर्म किया, जिस प्रकार के विवेक को हासिल किया, उस हिसाब से भी या वो पुण्य आत्मा बनेगा, महान आत्मा बनेगा, धर्म का काम किया तो धर्म आत्मा बनेगा, दिव्य कर्म किया तो देवात्मा बनेगा। तो देवात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। कभी ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन यही कहा जाता है। तो इसीलिए, और ये सब आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं है। पुण्य आत्मा का पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। परमात्मा एक है। कई बार कई लोग हमें एग्जाम्पल देते हैं कि अरे जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, एक बड़ा परमात्मा था, उसके अंश होकर के हम इस संसार में आए, और अंत में जाकर उसी में लीन हो जाना, परमात्मा बन जाना है। अब ये कहां तक सत्य है? श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में जब ये कहा, आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, ठीक है, अजर अमर अविनाशी। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, न तलवार उसको काट सकती, न हवा उसको सुखा सकती, न पानी उसको भिगो सकती, न अग्नि उसको जला सकती, अविनाशी शक्ति है जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं होता है, यानी जो सदा शाश्वत है। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। जबकि आत्मा का अस्तित्व विनाश नहीं होता है, अविनाशी है, तो वो समाएगा कैसे? अगर परमात्मा में विलीन हो गया तो उसका अस्तित्व शाश्वत कहेंगे? नहीं, समाप्त हो गया। तो जो समाप्त हो गया, जो विनाश हो गया, वो तो आत्मा नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो वो विलीन कैसे हो सकता है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गए, संभव है, क्योंकि वो मैटर है, तत्व है, तत्व तत्व में समा सकता है। जबकि आत्मा और परमात्मा तत्व नहीं है, शक्ति है, चैतन्य शक्ति जो अजर अमर अविनाशी है, इसलिए उसका अस्तित्व सदाकाल के लिए रहता है, वो विनाश को नहीं प्राप्त होता है। तो वो विलीन कैसे होगा? एग्जाम्पल अगर देवे तो बराबर का तो दे, तत्व की कंपैरिजन शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ कहां से कर सकते हैं? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यही कहा जाता है। तत्व तत्व में विलीन हो सकता है, पांच तत्व का बना हुआ शरीर पांच तत्व में विलीन हो सकता है, यह संभव है। लेकिन आत्मा अगर शक्ति है, एनर्जी है, विच इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, विनाश को प्राप्त नहीं होती है। तो कई बार कई लोग फिर एग्जाम्पल देते हैं, अरे जैसे पुत्र पिता का अंश है वैसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। पुत्र पिता का अंश है, अगेन इट इज मैटर, पुत्र पिता का अंश है, लेकिन आत्मा परमात्मा का वंश है, संतान है, अंश नहीं है। टुकड़ा नहीं है कि एक बड़ा परमात्मा था, उसका टुकड़ा कर दिया और वो आत्मा के रूप में नीचे आ गए, नहीं, वो शाश्वत शक्ति है, विच इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसीलिए आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है, वंश है कहना सत्य है, या अंश है कहना सत्य है, क्या कहेंगे? वंश है, वंश है। हम अंश माना टुकड़ा, टुकड़ा तो नहीं है। जिसका टुकड़ा हुआ वो विलीन हो सकता है, टुकड़ा है ही नहीं तो विलीन कहां से होगा? अजर अमर अविनाशी, या तो ये सत्य है, जन्म होता ही नहीं, शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा परम शरीर के अंदर प्रवेश होती है, जन्म नहीं होता है, लेकिन है तो परम। तो फिर हम ये गाते क्यों है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, या तो ये प्रार्थना निकाल दो, शारीरिक दृष्टि से कहा कि तुम माता पिता हो, नहीं, ये सत्य है कि हम परमात्मा की संतान है। आत्माएं जो है, जितनी भी आत्माएं हैं संसार के अंदर, सब ईश्वर की संतान है। जिस तरह से शरीर माता पिता के द्वारा पैदा किया गया है, वो शाश्वत है, इसी तरह आत्मा भी परमात्मा की जो रचना है, भले वो स्थूल रूप में रचना नहीं किया है जैसे शरीर को रचा गया है, क्योंकि गीता के महावाक्य के अनुसार, या तो गीता को अगर हम मानते हैं, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत शक्ति है, तो माना परमात्मा की संतान हुई ना, क्योंकि वो भी शाश्वत शक्ति है। हाँ, परमात्मा भी सदैव से है तो आत्मा भी सदैव से है, तो उसका विलीन नहीं होता है ना, विलीन हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ जी, अजर अमर अविनाशी कहा गया ना, अंश है, चाहे आप ये कहो कि अंश माना उसको ये स्वरूप में न लिया जाए कि अंश माना टुकड़ा हुआ और फिर जाकर विलीन होना है, ठोस पदार्थ नहीं है, इसीलिए कहा कि या तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग में कई बार कई शब्दों का भावार्थ गलत निकलता है जब हम लोगों को समझाते हैं, क्योंकि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, लोगों के अंदर से अज्ञान को हमें दूर करना है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो जिसका भावार्थ वो अलग निकाले और एक अलग मत आरंभ हो जाए। क्योंकि आज दुनिया में ईश्वर के बारे में मेरा भाव यही है कि ईश्वर के बारे में इतने जो मत मतांतर हो गए हैं, क्यों हुए? कहीं न कहीं कोई चीज का भाव गलत समझा गया है, इसीलिए तो अलग हुए, इतने मत मतांतर इसलिए तो हुए। और अगर हमें एक होना है तो उसके भावार्थ को यथार्थ रूप में समझने की जरूरत है, ताकि हम दूसरों को भी यथार्थ गाइडेंस दे सके कि इसका भाव ये नहीं, ये था, ये भाव बस है और कुछ नहीं। जीव भी अविनाशी कहा गया, ईश्वर भी अविनाशी है, लेकिन अंश के रूप में माना स्थूल रूप में अंश नहीं है, लेकिन संतान के रूप में अंश माना गया है, राइट? आपकी बात शायद हम समझ पाए हैं। हाँ हाँ, इसीलिए प्रजनी नहीं कहना है, हाँ प्रजनी, लेकिन ये प्रजनी नहीं है क्योंकि वो क्रिएटेड नहीं है, वो शाश्वत है। हाँ तो क्रिएट हो गया तो क्रिएट तो नहीं होता है, आत्मा तो शाश्वत है, तो उसको अंश नहीं कह सकते, लेकिन वंश जरूर है। हाँ हाँ, तो यही कहा कि अंश किस भाव में कहा गया है, भाव को समझो, भाव को समझना है कि हम क्रिएटेड नहीं है, लेकिन हाँ उसके जैसे जरूर है, ये तो कह सकते हैं उस रूप में अंश का, लेकिन उस बात को यथार्थ हमें जो दुनिया के अंदर एक अज्ञानता फैली है उसको तो क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शब्दों का भाव उन्होंने क्या ले लिया, हमने उस बात को समझाया नहीं, यही समझते हुए कि वो समझ गए, लेकिन वो नहीं समझे, और इसलिए अनेक मत मतांतर होने लगे, क्योंकि जो नहीं समझे उन्होंने जिस तरह से अपनी लिमिटेड बुद्धि से समझा वो फिर वही चीज को एक्सप्लेन करने लगे, और एक्सप्लेन करने लगे तो आज मत मतांतर हो गए। आज एक ही गीता, गीता के ऊपर कितने लोगों ने कितने प्रकार से अनुवाद किया, प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आज गीता के ऊपर भी टीका करने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 3,000। क्यों टीकाएं क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि समझा ही नहीं। अब सोचने की बात है, गीता किसने लिखी? महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी द्वारा लिखवाई। अब गणेश जी जिसको कहा जाता बुद्धि के देवता, इतना इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट व्यक्ति के द्वारा अगर लिखवाई गई हो और उसके ऊपर लोग टिप्पणी करे कि आज का मनुष्य इतना इंटेलिजेंट है, गणेश जी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो टीका करने का अधिकार उसको मिल गया, लेकिन कहां ना कहां कोई बात को उन्होंने नहीं समझा है, तभी तो टीका कर रहे हैं, इसको तो मानना पड़ेगा। और क्यों नहीं समझा? क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं था। हर एक ने अपना अपना मतलब निकाला, और जब हर एक ने अपना अपना मतलब निकाला तो देखा गया कि मत मतांतर होते गए। हम एक होने के बजाय क्या हो गए? अनेक हो गए। और जब अनेक हो गए तब तो आज दूसरे लोग भी फायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं ना। तो हमें एक होने की आवश्यकता है, हमें एक होने की आवश्यकता है। और उसके लिए जो सूक्ष्म बातें हैं, जिसका मिसअंडरस्टैंडिंग करके उन्होंने दूसरा भावार्थ निकाल दिया, तो उसको हमें समझाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। इसलिए आज परमात्मा दर्शन का ये विषय लिया गया है। क्लियर हुआ? तीसरी बात, जब हम कहते हैं जी, नहीं, विलीन नहीं हो सकती एनर्जी, विलीन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन मनुष्य को समझने के हिसाब से संतान कहा, ताकि उस हिसाब से आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है, अजर अमर अविनाशी है। नहीं हो सकता है, इसीलिए यही कह सकते हैं कि आत्मा शाश्वत है, चाहे संतान न कहो न अंश कहो, लेकिन शाश्वत शक्ति तो है, उस बात को तो समझ सकते हैं, है ना? शाश्वत शक्ति तो कह सकते हैं ना। हाँ, लेकिन मनुष्य ने अगर प्रार्थना गाई तो उसको समझाना तो पड़ेगा। नहीं माना, जैसे लोग कहते हैं भगवान के सामने जाकर, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये बालक शब्द क्यों आया? ताकि ईश्वर के साथ जब शाश्वत शक्ति कहते तो जैसे दो सेपरेट एंटिटी हो गई। जब बालक कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, माना एक अपनत्व का भाव क्रिएट होता है, समझा? कि ईश्वर हमारा हमारा है, एक भाव क्रिएट होता है कि ईश्वर के साथ हम एक अपनत्व से मिले, विलीन नहीं होना है, मरने की बात नहीं है। नहीं, फिजिकल नहीं, फिजिकल नहीं है, ये जो सारी चर्चा है सूक्ष्म स्तर पर है, सूक्ष्म स्तर पर है, आत्मा और ईश्वर के बारे, यहां फिजिकल की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, शाश्वत मान लो, शाश्वत मान लेते हैं, है ना? ठीक है, इसमें तो कंफर्टेबल है, आत्मा भी शाश्वत है परमात्मा भी शाश्वत है, लेकिन दो सेपरेट एंटिटी है, एक नहीं है और न एक हो सकते हैं। राइट, क्लियर, ओके। तीसरी बात जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, देखो अज्ञानता के कारण कई बार हमने दो दो बातें कही, एक तरफ हम ब्रह्म ईश्वर है भी कहते हैं, दूसरी ओर पार ब्रह्म परमेश्वर है भी कहते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर, अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर। तो इसका मतलब ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है। भाई ईश्वर और परमेश्वर को अलग क्यों कर रहे हो? तो ईश्वर कौन है? तो ईश्वर कौन है? अभी कितने जो मत मतांतर है वो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल, कि ईश्वर कौन है फिर? आत्मा ईश्वर नहीं है, आत्मा आत्मा है। मैं आप अभी आए, हमारी चर्चा वही हो रही थी, आप अभी आए, यही चर्चा हो रही थी अपनी। सही बात है आपकी, आपकी सही बात है। मैं इसी भाव से कह रही हूँ कि जो आज अलग अलग मत मतांतर हुए हैं, आपकी बात राइट है, लेकिन ये आप समझ रहे हैं, लेकिन क्या समझाया गया? बराबर है, बराबर है भाई। आप बीच में इंटरफियर नहीं करो, आप बीच में इंटरफियर नहीं करो। हाँ, भाव यही है कि हमने समझा। शांति रखो भाई, आप बीच में इंटरफियर नहीं करो, आप नहीं कहो, उनको राइट बात है, वो जो कह रहे हैं सही बात बोल रहे हैं। आप बैठिए महात्मा जी, बैठिए आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और सही कह रहे हैं कि जो हमने समझा वो सही है, लेकिन क्या हमने समझाया? आवश्यकता है समझाने की। तो हम अगर क्लियर हो जाएंगे तो समझाना हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने यही पूछा कि दोनों बात कही, ब्रह्म ईश्वर है भी कहा और पार ब्रह्म ईश्वर है ये भी कहा। सत्य क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर एक है मकान, एक है मकान मालिक। मकान मकान मालिक नहीं है। गीता में जब ये अर्जुन ने सवाल किया ब्रह्म क्या है, तो क्या जवाब दिया भगवान ने? क्या जवाब दिया? यही जवाब दिया कि ब्रह्म ये पंच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा महान तत्व है। तो तत्व परमेश्वर नहीं है, उस तत्व में निवास करने वाले परमेश्वर है। इसीलिए कहा गया पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, जो पार है, ये पांचों तत्व की दुनिया से पार है, जो महातत्व में, ब्रह्म महातत्व में निवास करने वाले हैं, वो परमेश्वर है। क्लियर? चौथी बात जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सर्वव्यापी है, ये कहां तक सत्य है? देखो, भावनात्मक रूप में अगर देखा जाए तो सत्य है, लेकिन सिद्धांतिक रूप में अगर देखा जाए तो ये माइक में भी परमात्मा है, ये टेबल में भी परमात्मा है, ये कुर्सी में भी परमात्मा है, कूड़ा कचरा गंध गटर सब में परमात्मा है। क्या उस बात को अपना विवेक स्वीकार करता है? कभी नहीं करे। ऊंचे से ऊंची हस्ती और सर्वव्यापकता के नाम से, इसलिए कहा भावनात्मक रूप से सत्य है। कि आज एक बच्चा जैसे विदेश जाता है पढ़ने के लिए और वहां से फोन करता है अपने माता पिता को और पूछता है कि माँ तुम मुझे याद कर रही हो? तो माँ क्या कहेगी? अरे तू तो मेरे दिल में रहता है, हर पल तुझे याद कर रहे हैं हम, यही कहेंगे। अब दिल में रहता है इसका मतलब फिजिकली कोई दिल में थोड़ी रहता है, भावनात्मक एक प्रेम का जो भाव है उस हिसाब से का। तो भावनात्मक रूप से ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सत्य है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो माइक में अगर परमात्मा है और मैं बैठ के इसकी पूजा आरंभ करना शुरू करूं ये गलत है, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। तब कई मर मनुष्य ने क्या कहा कि नहीं, हर एक प्राणी में ईश्वर है। अगर सर्व प्राणी में ईश्वर है तो आज एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, गलत कर्म करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? अगर कहे आत्मा का, तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठ के क्या कर रहा था? क्या ईश्वर की इतनी भी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? आज घर में बच्चे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं और किसी बात से लेकर झगड़ा हो जाए, मारपीट करने लगे, माता पिता सामने बैठे हो, तो छुड़ाएंगे या लड़ने देंगे कि उसका कर्म वो जाने? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। विवेक ये कहता है छुड़ाएंगे। ठीक इसी तरह से आज मनुष्य इतने गलत काम कर रहे हैं और ईश्वर अगर हरेक के अंदर बैठा है वो फिजिकली सिद्धांतिक रीति से, तो क्या वो छुड़ा नहीं सकता है? इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है? आज जब भी किसी ने हमें कोई बात कही या पूछी और हमें मालूम नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? कहते हैं गलती से भी, ये कहा नीचे वाला जाने या सब में जो विराजमान है वो जाने? नहीं कहते ना, ऊपर वाला। अज्ञानता से भी हमने यही कहा, ऊपर वाला जाने। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, यही महिमा गाई। गीता में भी जब उसने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश करने के लिए मैं आता हूं, अगर यही है तो कौन आएगा? अगर यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा भावनात्मक और सिद्धांतिक दोनों पहलुओं को समझना है, क्योंकि उसी से मत मतांतर हो रहे हैं। कई लोग भावनात्मक पहलू को ही उठा रहे हैं और सिद्धांतिक पहलू को नहीं समझ रहे हैं, और कई लोग सिद्धांतिक पहलू को उठा रहे हैं, भावनात्मक पहलू को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए इसको क्लियर करने की आवश्यकता है कि सिद्धांतिक पहलू क्या है, भावनात्मक पहलू क्या है। इसीलिए तो कहा ना कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, इतना पापाचार क्यों हो रहा है, होना ही नहीं चाहिए। देखो ऐसा है कि जैसे माता पिता घर में होते हैं ना तो बच्चों को लड़ने नहीं देंगे, लेकिन अगर माता पिता बाहर गए तो बच्चे खूब लड़ाई करेंगे, खूब मारपीट भी करेंगे, खूब एक दूसरे के बाल भी नोच लेंगे, करेंगे? ठीक इसी तरह अगर ईश्वर ने भी कहा कि मैं अधर्म के समय पर आता हूं, माना नहीं है तभी तो आएगा, और नहीं है तभी तो इतना लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि सर्वव्यापक कौन है? सिद्धांतिक रूप से सर्वव्यापक ईश्वर नहीं है, शैतान है। शैतान है जो सर्वव्यापक है और वो अपने आप को ईश्वर कहला रहा है, ये ब्रह्म फैला रहा है, इसीलिए वो पाप करा रहा है। पाप ईश्वर नहीं करा सकता है, लेकिन पाप कराने वाला कौन है? शैतान है। और शैतान माना पांच विकार, माया जिसको कहा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसको नरक के द्वार बताए गए, ये सर्वव्यापी है। आज ये सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन हाँ एक भावनात्मक सत्य जरूर है, उसको हम भी स्वीकार करते हैं कि आज अगर कोई कहे कि बहन जी आप भगवान या आप बाहर जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, भगवान हमारे साथ है, ये हम भी मानते हैं, ईश्वर हमारे साथ, यानी उसकी याद हमारे साथ है, हम उसको याद करते हुए चल रहे हैं, तो ये भावनात्मक पहलू हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन सिद्धांतिक नहीं। इसीलिए कहा सर्वव्यापक पांच विकार है जो नरक के द्वार है, वो इतना अत्याचार और पापाचार करा रहा है और मनुष्य उनके कठपुतली बन गए हैं, ईश्वर के कठपुतली नहीं रहे। ऐसा है सतो गुण जो है, सात्विक गुण जो है, एक बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं जिसको तमो गुण का ज्ञान ही नहीं है। तो फिर आज के जो गुंडे लोग हैं वो सतोगुण के प्रभाव में क्यों नहीं है? कौन सा पावरफुल है, सतोगुण या तमोगुण? हाँ वही माया है या शैतान है, वही आप है ना, बाद में डिस्कस करना, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही अलग है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वो सब्जेक्ट, अभी ईश्वर का सब्जेक्ट चल रहा है, नहीं तो हमारा टाइम पर पूरा नहीं होगा और फिर ब्रह्म कई प्रकार के रह जाएंगे, इसलिए उसको पूरा करे तो अच्छा रहेगा। हर बात में अगर काटते जाएंगे तो जो सब्जेक्ट है, हाँ, चर्चा का विषय है, अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये आपके प्रश्न सबके प्रश्न नहीं है। हाँ जी तो इसीलिए कहा कि दैवी शक्ति तो सतोगुण जो सतयुग का समय था तब था, तब उसका प्रधानता थी, सतो प्रधानता जो थी सतयुग के समय थी, रजोगुण जो था द्वापर में था प्रधानता, और कलयुग के अंदर तमोगुण की प्रधानता है ना। सत्वगुण शांत है, बच्चे के अंदर है आप बच्चे के अंदर सत्वगुण ही देखते हैं, लेकिन प्रधानता आज कौन सी है? और बच्चे के अंदर भी अभी तमो की प्रधानता आने लगी है, मोबाइल के बाद जो है ना, आज एक छोटे बच्चे के अंदर भी इतनी तमो की प्रधानता आने लगी है कि उसके अंदर भी वो सात्विकता नहीं रही है। इसीलिए तो कलयुग उसको कहा गया। तो भले तीनों गुण हैं, लेकिन तीनों गुण का प्रभाव अपने अपने समय पर अधिक होता है। सतयुग के अंदर सतोगुण की प्रधानता अधिक है, द्वापर युग के अंदर रजोगुण की प्रधानता अधिक है, और कलयुग के अंदर तमोगुण की प्रधानता अधिक है। उसको कोई झुठला नहीं सकते हैं, है सत्य, लेकिन सत्व गुण बहुत कम है, ना के बराबर हो गए, क्षीण हो गए हैं। इतना शैतान ने अपना राज्य फैला दिया है, इसलिए तो कहा जाता है कि जब परीक्षित राजा का राज्य था और कलयुग ने दस्तखत दी, तो उस समय परीक्षित राजा ने पूछा कौन, तो कहा मैं कलयुग हूं। कहा क्या चाहते हो? तो कहा आपके राज्य में थोड़ा सा स्थान चाहता हूं। तो परीक्षित राजा ने मना कर दिया कि मैं जानता हूं तेरा प्रभाव क्या है, मैं अपने राज्य में तुझे घुसने नहीं दूंगा। तब कलयुग हंसता है और कहता है मेरा समय आ चुका है, आप नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती भी आ जाऊंगा, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे स्थान मांग रहा हूं। तो कहा ठीक है, तीन स्थान दिए, कौन से? वैशालय में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। दूसरा? कहा शराब खानों में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। तीसरा स्थान? कहा जुए खाने में रहना, कसीनो में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। तब कलयुग ने कहा एक और स्थान। सोच में पड़ गया तो कहा मैं निवेदन करूं? कहा करो। तो कहा सुवर्ण में थोड़ा सा स्थान दे दो। और जैसे ही परीक्षित राजा ने हां कहा कि मुकुट में बैठ गया, और यही दिमाग है तो दिमाग का खेल उसने आरंभ कर दिया, उसको घुमाना चालू कर दिया। तो आज हरेक को जो घुमा रहा है वो कौन घुमा रहा है? शैतान ही घुमा रहा है। इसीलिए कहा कि अब जब सतयुग आने वाला है, ये मानते हैं हर कोई, तो हमें एक होना, तभी तो सत्यता को हम ला सकेंगे संसार के अंदर, नहीं तो नहीं ला सकते। तो इसीलिए सर्वव्यापकता की भावना भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। पांचवी बात, जब हम कहते हैं निराकार है, निराकार का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो जिसका नाम और स्वरूप ही नहीं है, अभी संसार के अंदर नाम रूप बिना की कोई आकृति है, हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात दिखाना हो तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? दिखा सकता है। जो हवा की आकृति नहीं है उसको भी एक चित्रकार ने चित्र के अंदर ढाल दिया। शांत प्रकृति दिखानी है तो वो भी दिखा सकता है, वो भी दिखा सकता है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी उसने आकार दे दिया। तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज ही नहीं है। तो क्या ईश्वर स्वयं नाम रूप आकार बिना हो सकता है? नहीं, उसका भी अपना स्वरूप है। हाँ, ये जरूर शास्त्रों में कहा है मनुष्य सदृश नहीं, लेकिन उसका अपना आकार तो है। वो कौन सा है? तो जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य है वैसी आकृति है, पशुओं का पिता पशु है, पक्षियों का पिता पक्षी है, तो आत्माओं का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाते हैं कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योत है। आत्मा का स्वरूप स्थूल ज्योत नहीं है जो इन आंखों से दिखाई दे, लेकिन ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है। तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? उस अर्थ में पिता कहा, उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी प्रकाश पुंज है। जिसके लिए गीता में कहा अर्जुन ने, हजारों सूर्य से तेजोमय, जिसका तेज मैं सह नहीं पाया, सूर्य के समान है जो, तो तेजोमय स्वरूप है। तो इसीलिए कहा कि ईश्वर का स्वरूप कैसा होगा? तेजोमय स्वरूप। जैसे आत्मा का स्वरूप, आत्मा अगर प्रकाश पुंज है तो उसका पिता भी तेजोमय प्रकाश पुंज है, दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाशमान, ये उसका दिव्य स्वरूप है। जिसका यादगार भारत के अंदर हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा किया। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, लिंग माना आकृति। जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति, ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करें, ज्योति पर अपने भाव को अर्पित कैसे करें, इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके, और उसी को ही सनातन का बीज कहा। बीज स्वरूप है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, ये ज्योति स्वरूप है, उसका यादगार वो ज्योतिर्लिंगम है, और इसीलिए उसको दिव्य नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं, भावनात्मक और अर्थपूर्ण नाम है। मनुष्य के नाम अर्थपूर्ण नहीं होता, किसी का नाम होगा शांति भाई लेकिन जीवन में शांति होगी नहीं, किसी का नाम होगा हसमुख भाई लेकिन हंसते ही नहीं होंगे, टेंशन में ही रहते होंगे। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का दिव्य नाम भी गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। इसलिए भारत के अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है, जहां की कथाएं भी विचित्र रूप से है कि कैसे वहां का वो ज्योतिर्लिंगम की उत्पत्ति हुई, वह कैसे वो ज्योतिर्लिंगम का एक तीर्थ स्थान बना, द्वादश ज्योतिर्लिंगम तो क्या। लेकिन मैं कहती हूं भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव का मंदिर न हो। उसको कहा ही गया देवों का भी देव महादेव, जो कहा ना सभी देवों का हेड कौन है, महादेव है। सभी देवताओं के जो आराध्य रहे, चाहे श्री कृष्ण हो, श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के पहले पूजा की, पांडवों से भी कराई। श्री कृष्ण के जो आराध्य रहे, श्री राम के जो आराध्य रहे, रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, तो जितनी भी देवियां हैं उन देवियों को भी क्या कहते हैं, शिव शक्तियां, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां। तो जो देवों का भी देव है, देवियों का भी देव है, वही तो महादेव है। लेकिन यहां भारतवासी एक अज्ञानता के कारण ही गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। सावन का महीना चल रहा है और इसीलिए इस सत्य को भी समझना जरूरी है कि जहां दोनों के नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप आकृति ही अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का ऑक्यूपेशन कर्तव्य ही अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ, शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय होता है, एक भोलेनाथ है एक प्रलयनाथ है, नाम अलग, स्वरूप अलग, कर्तव्य अलग, फिर एक कैसे हो गए। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहे हैं, कैलाश पर्वत पर जाकर जिसने ध्यान किया, किसका ध्यान किया, कैलाश का। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग धरती पर अगर है तो वह कैलाश, और वहां बैठ के शंकर ने भी ध्यान किया, किसका किया, शिव का ध्यान किया। तो जो शिव का ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए शंकर को सारा परिवार गृहस्थ रूप में दिखाया, मां पार्वती ये दो बच्चे हैं और सब मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। पूजा तो अपने आराध्य की जाती है ना, तो माना शंकर के भी आराध्य कौन रहे, शिव ही रहे, है ना, शिव ही रहे। तो इसीलिए कहा सभी देवों का भी देव महादेव वही है। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाए इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु जब मक्का जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का है, और उसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है कि जब मुसलमान धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी, जब ईश्वर के मत को लेकर के मतभेद हो गया, क्योंकि पहले मक्का के अंदर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी, मतभेद हो गया तो उस समय खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, तब ऊपर से ये पत्थर गिरा था, ये मान्यता है, ऊपर से ये पत्थर गिरा था और आकाशवाणी हुई थी कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो, और तब मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद अपने हाथों से उसकी स्थापना मक्का में की, और तभी वो सारे बाकी के देवी देवताओं के जो पुतले थे उनको हटा दिया गया और एक काबा का पवित्र पत्थर रखा गया, और तब से लेकर ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन सफल नहीं हुआ। तभी उनकी हर साल हज यात्राएं निकलती है, लेकिन हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन जो हज में जाता है वहां जाने के बाद क्या करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। एक पिलर है जिसको शैतान मानते, शैतान को पत्थर मारते हैं और सात बार परिक्रमा करते हैं, ये पवित्र पत्थर की सात बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कोई मस्जिद में नहीं होती है, और अंत में फिर उस पत्थर को चूमते हैं और बंदगी करते हैं। बंदगी में अंत में एक वाक्य उनका आता है, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। जब कैसे परवरदिगार परमेश्वर के लिए कहा, नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है, नूर का मतलब तेज प्रकाश, ज्योति का मतलब तेज प्रकाश, जिसको हमने ज्योति कहा उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में तो कहा जाता है कि जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए आज भी अगर वेटिकन में चले जाओ, रोम में, वेटिकन सिटी में जाओ, वेटिकन के अंदर जो सबसे बड़ा चर्च जहां पोप की गद्दी है, उस चर्च के अंदर आपको जीसस की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लाइट का ही सिंबल मिलेगा। जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने एक ओमकार और क्या कहा, एक नूर, एक नूर कहा, उन्होंने भी नूर कहा, उसी को ही ईश्वर माना है। वाहे गुरु जो कहा, किसको कहा? किसी देहधारियों को नहीं कहा है, उस नूर को कहा है, और उसी के तरफ इशारा किया गुरु नानक देव ने। और इसीलिए दिखाते कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी क्या किया, शिव की महिमा गाई। और आगे जाए तो महात्मा बुद्ध ने कभी किसी को मूर्ति पूजा की और प्रेरित नहीं किया, लेकिन आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर, 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता, जिसको कहा जाता करनी का पवित्र पत्थर, जिसको नाम दिया है चिंकुन शेकी, शिंतोनिज्म वाले चिंकुन शेकी का मतलब है जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। अभी मैं जापान होकर के आई, मैं खास देखने गई थी ये प्रकाश को, जो ज्योति वो वहां अखंड ज्योति के रूप में जलाते हैं, दूर से ही उनका दर्शन करना होता है, आप नजदीक नहीं जा सकते हैं, और उसकी इमेज मिरर के द्वारा आपको देखने को मिलती है। तो उस प्रकाश को ही उन्होंने परमात्मा कहा, परमेश्वर कहा। और आगे जाए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, सभी ध्यान मुद्रा में, किसका ध्यान कर रहे हैं? अभी मेरा राजस्थान में जाना हुआ था तो उस समय हमारी चर्चा हो रही थी वहां के जो पंडित थे उनसे, तो हमने कहा ये 24 के 24 ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान कर रहे हैं, कौन है? क्योंकि एक दूसरे का ध्यान तो नहीं कर रहे होंगे, तो किसका ध्यान कर रहे हैं? तब कहा उन्होंने सिद्धशिला का, सिद्धशिला माना जो सर्वश्रेष्ठ है, उसी का ध्यान कर रहे हैं, जो अखंड ज्योति स्वरूप निराकार है। और आगे जाए तो पारसी धर्म में जब कहा जाता है पारसी लोग ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनकी अग्यारी को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, जो कभी बुझती नहीं है। और जब इनकी नई अग्यारी स्थापन होती है तो जलती हुई ज्योत का एक टुकड़ा ले जाकर के वहां स्थापित कर देते, तो जो अखंड ज्योत है। तो सर्वधर्म मान्य कौन है? कौन है? एक ही है, जिसको हम लोगों ने शिव कहा, सभी धर्म वालों ने उनको स्वीकार किया है, चाहे निराकार कहा, लाइट कहा, नूर कहा, प्रकाश कहा, अखंड ज्योति कहा, लेकिन है तो एक ही। नाम भले अलग अलग दिए, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक, साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक। फिर हम रास्ता भूले कहां से, हम रास्ता कहां से भूल गए, हम डेविएट कहां से हो गए जो आज इतने मत मतांतर में चले गए। जब सबने उसकी ओर इशारा किया, सभी देवी देवताओं का आराध्य वही रहा, तो हम रास्ता भूले कहां से, कैसे भूल गए। और इसीलिए आज हमारी ताकत क्षीण होती जा रही है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था, मेरे द्वार पर जो आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ देना जरूर है, देता था। एक दिन भिखारी के मन में विचार आया, ये राजा लाता कहां से है, उस सोर्स को अगर मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ना पड़े। तो एक दिन वो जल्दी पहुंच गया, 6 बजे में पहुंच गया। जब 6 बजे में पहुंच गया तो द्वारपाल से पूछा, इस समय राजा कहां होगा और क्या करता होगा। सोचा सुबह सुबह ही लेता होगा, तभी वो सारा दिन लोगों को देता है। तो कहा, राजा तो मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। तो कहा, मैं वहां जा सकता हूं। कहा, जरूर जा सकते हैं। उसने सोचा वहीं कोई सोर्स होगा जहां से प्राप्त करते होंगे। जाकर पीछे बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने प्रार्थना की भगवान से कि हे प्रभु, मेरी झोली भरतू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने बात सुनी, उठ करके बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा, बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात थी। करे, आज पता चला राजा भी भिखारी है, वो भगवान से मांगते हैं, हम उनसे मांगते हैं, मैं भी डायरेक्ट भगवान से ना मांगू ताकि मैं भी दूसरे को दे सकूं। चलते चलते भिखारी के मन में विचार आया, राजा तो पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। लेकिन हनुमान जी की झोली किसने भरी, श्री राम ने। तो कहा, इसका मतलब श्री राम के बहुत सारे भक्त, उसमें से हनुमान जी को ज्यादा मिला होगा अनन्य होने कारण। हनुमान के भी इतने सारे भक्त, उसमें से राजा को थोड़ा ज्यादा मिला होगा। राजा को भी इतने को देना पड़ता है, तो मेरे पास जब आता है तो थोड़ा सा ही आता है। फिर विचार आया, श्री राम की झोली किसने भरी। तो कहा, वो तो शिव की पूजा करते थे। तो भिखारी को समझ में आया कि इसका मतलब शिव अल्टीमेट है, उसने ये सभी देवी देवताओं की झोली भी भरी। ये सभी देवी देवताओं के भी जो रहे उसकी झोली उन्होंने भरी, हनुमान जी की झोली भरी, हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी जो कहा, ये वाया वाया में सब कट हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं तो हम भी कहीं वाया वाया में तो नहीं अटक गए हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन करें ना, जहां से सर्व प्राप्ति होनी हो, जो सर्वशक्तिमान, इसीलिए शिव को कहा जाता है इन्फिनेट, अनंत, अनंत है जो, अनंत प्रकाशमान, सर्वशक्तिमान। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर 3 लकीर लगाई जाती है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। उस 3 लकीर के बीच में आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, और उसके ऊपर 3 पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, अर्थात जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, इसलिए उनकी उत्पत्ति दिखाती है। लेकिन शिव के साथ शब्द जाता है शिव शंभू। शंभू का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, जो स्वयं प्रकट होता है, शंभू है। तो सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च शक्ति जो स्वयंभू है, जो सर्व परे है, सभी चक्रों से पर है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल, न पाप और पुण्य, न सुख और दुख, दुख हरता सुख करता है। और यह तीन की महिमा भी उसके साथ ही जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। इसीलिए तीन मूर्तियों का गायन भी हर धर्म में मिलेगा। जिसको हमने ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, उसको इस्लाम धर्म में जिब्राइल मिकाइल इस्राफिल कहते हैं। जिब्राइल माना जो सबक देने वाला, ज्ञान देने वाला, मिकाइल माना जो रोजी रोटी देने वाला यानी पालना करने वाला, और इस्राफिल माना जो कयामत लाने वाला। यही तीन देवताओं का गायन क्रिश्चियन धर्म में भी मिलेगा, थ्री होली एंजल्स या थ्री होली गोस्ट, जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, है ना। तो हर धर्म में ये तीन का गायन जरूर मिलेगा, क्योंकि इन सब के ऊपर तो परमेश्वर है, जिन्होंने इन तीन देवताओं की उत्पत्ति की। करण करावनहार वो है, ये देवताओं के माध्यम से कराया नई सृष्टि का सृजन, पुरानी सृष्टि की महाविनाश, और नई सृष्टि के पालना का कर्तव्य विष्णु के द्वारा। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन कराने वाला कौन? शिव। विष्णु द्वारा पालना कराने वाला कौन? और शंकर द्वारा महाविनाश कराने वाला कौन? इसीलिए शिव शंकर को मिला देते हैं। तो ये है परमात्मा का पूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लिया जाता है तो पांच बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, आइडेंटिटी के लिए फोटो चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, एड्रेस चाहिए और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन चाहिए। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता। तो आज परमात्मा के परिचय में भी पांचों बातों को देखा, जिसका दिव्य नाम सदा शिव, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो। उसका स्वरूप है ज्योतिर्पुंज, प्रकाश पुंज, नूर, प्रकाशमय, लाइट, अखंड ज्योति स्वरूप, निराकार। उसका क्वालिफिकेशन पांचों बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरे, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान है। और एड्रेस गीता में तो दिया है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वो परमधाम मेरा धाम है। लेकिन कहा पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, वो वहां का निवासी है। लेकिन उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्म के समय पर वो आता है, आकर के शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य आरंभ कर देता है और ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का सृजन का कार्य आरंभ करता है। फिर जिसकी पालना विष्णु श्री नारायण करते हैं। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। तो अब तो कोई अगर पूछे कि भाई ये सभी भगवानों का हेड कौन है, इस सभी ईश्वरों का हेड कौन है, वो परमेश्वर है। तो हम कम से कम एक हो करके सभी को गाइड करके, अनेक प्रकार की मत मतांतर में आके, मतभेद में आकर के अलग होने के बजाय हम एक हो करके सनातन धर्म की ओर, जो परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उस सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, उसमें अपना क्या करें, हमारा अपना भी योगदान जरूर हो, हिस्सेदारी हो, ताकि हम एक होकर के इस दुनिया को परिवर्तन करके सारे संसार को सनातन धर्म वाले बना सकते हैं। और यही हम सबका लक्ष्य है कि बनाना ही है। अब सतयुग ला करके ही छोड़ना है, सनातन धर्म का बना करके ही छोड़ना है। ठीक है, आप सब साथी है, सब साथी है, वाह, थैंक यू, बस वाह।